जी ने आदेश दिया है तुमको हम काशी में ले जाएंगे शंकर के निकट में, तुम हमारे साथ में चलो और यदि नहीं चलता तो मैं तुम्हें जला दूंगा। तुमने कहा कि भाई जलाओ तलाओ मत हमको, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, कि एक शर्त है बीच में कहीं न मत रखना और अपवित्र होकर के हमको मत उठाना, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। कहे यो मत, तो ऐसी बात होगी मैं एक ही साथ ले चलूंगा और पूरे ब्रह्मचर्य के साथ में रहूंगा, पवित्र रह करके स्नान करके मैं तुमको ले चल रहा हूँ, बीच में कहीं नहीं उतारूंगा। यदि उतार दिया तो मैं वही रह जाऊंगा। अच्छा ठीक है। जब यहाँ आए गिरिराज गोवर्धन जी ने ऐसी प्रेरणा की कि लग गया उनको लघु शंका लग गई, बड़ी जोर से पेशाब करने की लालसा हुई और ऐसा हुआ जैसे उनको चट रख दिया और रख करके पेशाब करते लगे, घंटों लग गए करते 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 बंद ही नहीं हो। गिरिराज जी आराम के साथ से यहाँ पर बैठ गए, कहा जब मैं जरा सो लूं तो बस वो सो गए, पीछे की तरफ उधर और आगे की तरफ इधर में विश्राम कर रहे हैं। जब वो स्नान करके पुनः आए, बोले जी अब तो चलो मैं पवित्र होकर के आया। कहा जी आपको याद नहीं है जो मैंने कहा था कि जहाँ रख दोगे वहाँ से उठूंगा नहीं, अब मैं नहीं उठता। अच्छा एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहा था, राह रख देगा भाई तो अब मुझको उतार दिया मैं नहीं चलूंगा, अब तो मैं स्नान करके पवित्र होकर के आया हूँ, आपसे यही शर्त थी, अब मैं यहाँ से कदापि नहीं जाऊंगा। तो तू नहीं जाएगा, तू नहीं मानेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो देखो तुम नहीं जाएगा, आज से तुमको श्राप देता भी संपात करता हूँ, तुम दिन दिन में तिल तिल करके क्षय हो जाएगा, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एवं मस्त हमको ऐसा मंजूर है, मैं कृष्ण के लिए अभी आ रही है, अभी कुछ दिनों में अंततः उसको तो मैं देख लूंगा और उनके चरण गोपियों के चरण हमारे ऊपर में पड़ जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बस गिरिराज यहाँ से उठ करके नहीं गए, तब से गिरिराज यहीं पर हैं, उनके नित्य लीला के परिकर हैं। देखने से मालूम होता है ये द्रोणाचल के पुत्र हैं या क्या है, असल में ये ऐसी बात नहीं, कृष्ण के वो नित्य लीला के परिकर हैं। जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ में गोपियां नंद बाबा सभी आते हैं, गिरिराज गोवर्धन आते हैं, यमुना आती है, 84 कोस की भूमि वहीं से आती है। यहाँ पर आप लोग इस समय में पृथ्वी पर नहीं चल रहे, अभी कहाँ चल रहे हैं, वो धाम है हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज हम धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, जो इस परिक्रमा में आए हैं किसी प्रकार से सहायता किए हैं उन सबका ये गिरिराज ही कृपा करेंगे, उनकी मनस्कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। यदि धन धान्य चाहिए, पुत्र लक्ष्मी ये सब चाहिए, वैकुंठ स्वर्ग चाहिए तो वो चुटकी बजा दे बिना मांगे ही दे देंगे, रही वैकुंठ की बात उसको भी दे देंगे, द्वारका में रहने की रुक्मिणी सत्यभामा जैसी भी इच्छा हो तो वो दे देंगे साजी, किंतु ब्रज में जन्म हो और ब्रज में राधा कृष्ण की भक्ति हो और उनकी उत्कंठ प्रेम हमको हो, राधा जी की दासी होकर के उनकी सेवा, ये बड़ा भारी मुश्किल है, किंतु गिरिराज जी उसको भी दे देते हैं सोच समझ करके। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मथुरा के आप लोगों ने सुना जो बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं, वहीं के हमारे उनका नाम भी गोवर्धन साई के पिताजी का नाम, अभी क्या नाम, बलबीर सिंह जी हैं और उनके पिताजी गोवर्धन, और गोवर्धन की यहाँ पर स्थापना कराई और यहाँ पर जब से हम हैं 1954 की वापसी में से जब जब आते हैं हमारे साथ में 400-500 हजार आदमी रहे, इस समय तो हम लोग बहुत ही कम 150-200 हैं, 400-500 आ जाते हैं, सब लोगों को विचित्र प्रसाद गिरिराज जी का देते हैं। तो मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ ये जब तक लोग ये हैं इनके वंश परंपरा तक सबको ऐसा ही धन धन्य से पुरपुरत रखते हुए परलोक को देना ना भूलें, और ये लोग भी परलोक कृष्ण की भक्ति राधा जी के चरणों में भक्ति इन लोगों की हो, इनके सब परिवार के लोगों को हो, और हमारे साथ में जितने लोग भी आए हैं सबके राधा कृष्ण के चरणों में यही प्रेम गिरिराज गोवर्धन हम लोगों को दो दें। बहुत विलंब हो गया, आप लोगों को भूख भी लगी है, पैर भी आप लोगों के थक गए हैं, इसलिए अधिक समय नहीं लेकर के अब गिरिराज जी की आरती होगी और आरती के बाद में जहाँ व्यवस्था यहाँ हो रही है वहाँ पर आप लोग बैठ करके आप लोग प्रसाद पाइए। एक घंटा घंटा विश्राम करके 3 बजे हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे और धीरे धीरे कीर्तन करते हुए, कोई डरने की बात नहीं है, थक जाने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सुस्ता लेंगे सब ठीक हो जाएगा। हम भी साथ में चल रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। बोलो गिरिराज
राज राधिकायै तदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग आज राधा कुंड में उपस्थित हुए हैं। यात्रा आरंभ होती है, बृहद भगवतामृत में ऐसा बतलाया गया, यात्रा आरंभ होती है क्या स्थान आसाम वाला, आसाम का कामाख्या देवी, कामाख्या देवी से, कामाख्या देवी का आराधक, दुर्गा देवी का आराधक कोई, उसको इच्छा हुई भजन करने की, रुपए पैसे की जरूरत थी, लड़की की शादी करना है, घर बनाना है, दान दहेज देना है, इसलिए पैसे की जरूरत है। वो चला गया है, था तो इधर ही का मथुरा का या गोवर्धन
ना मथुर ब्राह्मण,
वही गोवर्धन इत्यादि का रहने वाला माथुर ब्राह्मण था। कहा वहाँ के लोग सब छोड़ छाड़ करके आते हैं भजन करने के लिए, और यहाँ के आदमी रुपया कमाने के लिए देवी के धाम में जाता है। बड़ी विचित्र बात है, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आए यहाँ पर भजन करें, और यहाँ वाले क्या करते हैं, एक एक पैसे के लिए भटकते भटकते उस देवी के धाम में कहाँ कहाँ पर पहुँच जाते हैं। गया में भी जाते हैं, पिंड भी दे आते हैं, तो यहाँ पर तो वहाँ से चले गंगा सागर पहुँचे, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, मैंने जो जाएगा फिर लौट कर वो नहीं आएगा, दूसरा जाने की इच्छा नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं आएगा, जब जाएगा वहाँ पर स्नान करने के लिए तो केवल टट्टी टट्टी चारों तरफ में मल मूत्र वो रहता है, वो उसी के ऊपर में कहते अब बाबा आप नहीं जाएं, कान पकड़ना है, मैंने कर्म मार्ग है। ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम सीने पुण्य मत्स्यलोकम, वहाँ पर कम्बल बट रहा है, वस्त्र बट रहा है, खिचड़ी बट रही है, यही सब बढ़ता है, किस लिए पुण्य हमको हो। तो ये क्या चीज है, ये मलमूत्र के ही समान है, उसी में फिर से स्नान करते हैं। इसलिए गंगा सागर में एक आदमी एक बार जाकर के, वैष्णव लोग तो जाते ही नहीं, बड़े मस्त से कोई एक भला भूला भटका आदमी वैष्णव वहां जाएगा, तो वहां पर स्नान कर लिया, फिर कर्म मार्ग में फंस जाता है, बड़ी मस्तों से साधुओं का संग हो गया, ये तो बहुत ही बुरा मार्ग है, तो वहां से चलता है, चलते चलते गया धाम में पहुंचता है। वहां पर एक कर्मनाशा नदी है, कर्म को नाश करने वाली है, क्योंकि वहां पर भगवान का चरण कमल है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु गए, उन्होंने दिखलाया जी हम पिंडदान करने के लिए अपने पितरों को उद्धार करने के लिए जाते हैं, किंतु मिल गए ईश्वर पुरीपाद जी, कहा जी आज मैंने अपना हृदय इत्यादि जो कुछ था आपके चरणों में समर्पण कर दिया, अब तो आप हमको संसार से पार कीजिए। साधु संग का फल यह है कि पिंड देने से केवल वही व्यक्ति का उद्धार होता है जिसको पिंड दिया जाता है, और साधुओं के संग से क्या होता है, उसके कोटि पितृगण
उद्धार हो जाते
हैं, कोई पिंड पिंड नहीं। इसलिए गया में जब चलते हैं तो भगवान की कृपा से उनके चरण कमलों को स्पर्श करके कर्मनाशा में स्नान करके सब कर्म धर्म जो कुछ वहीं पर छोड़ देते हैं, और वहीं से ज्ञान मार्ग आरंभ हो गया। अब काशी के निकट हम आ रहे हैं, काशी में जाना खोल प्यार से, काशी में प्रवेश मत करना, काशी को पास दे करके चले आओ, और यदि काशी में गया तो फांसी हो जाएगी, फिर वहां से कभी सदा के लिए उसी में फंस जाएंगे, नित्य के लिए वहीं पर रह जाएंगे। इसलिए हमको मुक्ति फुक्ति की जरूरत है, मुक्ति तो अपने आप आ जाएगी भगवान की सेवा करने से। इसलिए मुक्ति की खबरदार कोई कामना ना करे। इसलिए काशी में मणिकर्णिका घाट पर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी, किस चीज की, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया? अरे तुम भगवान के सेवक हो, जितने आदमी हैं सभी कृष्ण के दास हैं। कृष्ण शक्ति भेदा भेद जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। इसे चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में वहाँ काशी में जाकर के झट एक दिन के बाद में तुम भगो वहाँ से, वहाँ पर मत रहना अधिक दिन। दुर्गा देवी ने स्वयं कहा महेश्वर यहाँ पर अधिक दिन मन रहो, अन्य तो मुक्ति में तुम्हारा लय हो जाएगा, ब्रह्म में सदा के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुक्ति नहीं चाहिए। काशी को दाहिने रख करके और वहां से आगे बढ़ जाओ। अब आया त्रिवेणी, त्रिवेणी में गंगा जमुना की धारा सरस्वती की धारा मिलती है, वहां जाओ। वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग मार्ग के महीने में अभी तपस्या करेंगे, स्नान करेंगे, परमाणु संप्रदाय के अधिकांश समुदाय के साधु लोग जाएंगे, कल गौड़ीय वैष्णव लोग रूप गोस्वामी का दर्शन करने वहां जाएंगे, किंतु बेनी माधव इत्यादि का दर्शन नहीं करते। जहां पर महाप्रभु जी रूप को शिक्षा दी थी उनकी चरण की धूलि वहां लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो वहां पर सुविधा नहीं होगी। भक्ति तो होगी, वहां हो सकती है, किंतु वैकुंठीय भक्ति होगी, लक्ष्मी जी की सेविका बन करके वहां पर रहना पड़ेगा। उसमें ऐश्वर्य भाव है, चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति देने के लिए आए वो नहीं मिलेगी। इसलिए वैष्णव लोग वहां पर बेणी माधव चतुर्भुज हैं, वो बेणु माधव नहीं मत समझिए, ये बेणी माधव हैं, बेणी माधव चतुर्भुज हैं, उनको प्रणाम कर लो आगे चलो। एक महीना में जरूरत नहीं है वहां रहने की, अन्य तो उन लोगों का संग होगा, आप बस नारायण में ही उपासना लग जाएगी, इसलिए आगे बढ़ो। रूप की शिक्षा कुछ रूप गोस्वामी के चरणों में रख करके थोड़ी सी सीखो, आगे चलो। चलते 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 मथुरा में आए, बड़े सौभाग्य की बात है। वहां पर स्नान करना पड़ेगा भी शाम घाट में, किस लिए, ऐश्वर्य का जो भाव है वो दूर हो जाए। कृष्ण की वह भक्ति जिसमें प्रेम माधुर्य पूर्ण प्रेम नहीं है, उसे ब्रज का भाव नहीं आता। कृष्ण को वशीभूत कोई भक्ति नहीं कर सकती है यदि उसमें ऐश्वर्य भाव है, अर्थात तो कृष्ण स्वयं भगवान है, सड़ई सज्ज पूर्ण है, सर्वे सरेश्वर है, तो कृष्ण प्रसन्न होकर के बैकुंठ की चेत दे देंगे, ब्रज का भाव नहीं देंगे। इसलिए वहां विश्राम घाट में इन सबको स्नान करके विश्राम दे दो, आप यहीं रहिए और सीधा कहाँ चलिए, वहां से आगे बढ़िए। सबको विश्राम घाट में सबको प्रणाम करके, कृष्ण मेरे प्रिय सखा हैं, कृष्ण मेरे प्यारे बेटे हैं, मेरा बेटा है यशोदा जी का भाव, और गोपियों का दो भाव, मैं कृष्ण की हूं और कृष्ण मेरा है, ये तीन भावों से प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होने पर भी उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि कृष्ण मेरे हैं, यह मदीय भाव कृष्ण में, ये चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा थी। वहां से गोकुल में पहुंच जाइए, गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा में आंशिक जन्म हुआ, वो प्रकट हुए, और गोकुल में क्या हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। वहां पर यशोदा माँ जी ने बांधा, नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल जतोदा भियोलु खलाधाम मानम परामिष्टमस्यं ये स्वयं भगवान है, वो हो भगवान, सब कारणों के कारण है, सब ईश्वरों के भी ईश्वर स्वयं सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु यशोदा मैया उनको बांध देती है अपने प्रेम से, उसको दूसरा कोई सखा लोग खोलते रह गए, सखा तक नहीं खोल सके तो और लोगों की तो बात क्या। इसलिए कृष्ण यहाँ पर वशीभूत हो गए। अब गोकुल से वृंदावन में आइए, कृष्ण ने 3.5 वर्ष तक वहां लीला की और इसके बाद में आए। कृष्ण बंधे किंतु थोड़ी देर में ही नंद बाबा ने खोल दिया, और वो कृष्ण ऐसा बंधना चाहते हैं जो अब हमारा बंधन सदा के लिए ही बना रहे,
कभी नहीं।
तब वो वृंदावन में आए और राक्षसथली में गोपियों ने राधा जी के साथ उनका पक्का गठबंधन कर दिया। तब वो राधा दामोदर हो गए, जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते हैं। रास वहाँ पर हुआ पंचीत पट में, किंतु पंचायती रास हुई। पंचायती रास माने क्या? उसमें सब प्रकार की सखियां सब आई, पुरुष एक भी नहीं गया। एक जाने की चेष्टा की, गोपिया ने उसको कान पकड़कर जैंक दिया और गुलचे से मुख फुला दिया, वो कौन है? गोपीश्वर। इसलिए और कोई पुरुष नहीं गया, केवल यही गए, गोपियां सब गई। किंतु पंचायत सब प्रकार की गोपियां थी, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध, कायव्यूह, श्रीमती राधिका इत्यादि, यही सब रस्सी। किंतु सभी लोग मिलकर दुनिया रास्ता हुआ, बहुत अच्छा हुआ, किंतु मेरे मन को लुभाने वाला उतना नहीं हुआ। तब वो वृंदावन से गोवर्धन में आए, गोवर्धन में जहाँ चंद्र सौर में ले गया, जहाँ पर की चांद 1000 चतुर्युगी वहीं पर खड़ा रहा, वो चंद्र सौर, और पैठा देखा, राधा जी को देख करके उनके दोनों हाथ भीतर चले आए, और गोपियों के लिए नहीं किंतु राधा जी को देखते ही ऐसा हो। फिर राधा जी को मिले और कृष्ण उनके निहोरा करने लगे, मान को तोड़ने के लिए। स्मर घर लखंडनम मम शिरसि मंडनम देही देही तो
पल्लवम उदारम,
आप अपना मान हमको झोली में भिक्षा दीजिए, मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में रख रहा हूँ, इस मान के लिए मैं बहुत मर रहा, आप हमारी रक्षा कीजिए। हृदय में आग लग रही है, कैसी आग? दामालल से भी अधिक, स्मर गरल खंडनम, यह स्मर है 20 सर्प, कैसा? समस्त विश्व के सर्प मिलकर के भी जिनको 20 नहीं होगा, उस तरह से राधा जी के मान में है। इसलिए उसको बुझाने के लिए ताप को राधा जी के चरणों में सिर रख देते हैं। वहां से भी ये श्रेष्ठ स्थान है, अब इसे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है, यही सबसे अंतिम स्थान है। ये पर पासी में राधा कुंड है, राधा कुंड माने राधा जी, कृष्ण कुंड माने कृष्ण। किंतु कृष्ण कुंड क्यों नहीं कहा गया, जो राधा कुंड ही कहा गया? इसलिए ये सब का रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। हमारे प्रभुपाद जी नित्य लीला प्रभु ओम विष्णुपाद कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी यहाँ आकर के भाव में विभोर हो गए, परिक्रमा उन्होंने की, और यहाँ पर स्थल स्थल में कुंज बनाए गए, जैसे कि गोविंद लीलामृत में है कौन कौन सी दिशा में कौन कौन सखियों का कुंड है, ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता इंदुलेखा रंगदेवी सुदेवी तुंग विद्या इत्यादि, रूप मंजरी रति लवंग कर्पूर मंजरी रस मंजरी इत्यादि, अनंग मंजरी, सबका यहाँ स्थान है, सखाओं के स्थान है। उन्होंने सखाओं को सखियों को दे रखा है, चारों तरफ में सुंदर सुंदर कुंज अभी भी हैं, जिनका नेत्र ऐसा है भक्ति का वो लोग देख सकते हैं, सभी लोग नहीं देख सकते। इसलिए समस्त स्थानों से बढ़कर के स्थान है। वैकुंठाद विशोदरात मंजिता इत्यादि में रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये बतला है, ब्रज विलास बतलाया है। ये वृंदावन सबसे स्थान श्रेष्ठ है, उसे गोवर्धन प्रेम का प्लावन करता है, प्रेम को जैसे प्लावन होता है, बाढ़ आ जाती है ऐसे। किंतु ये सब होने पर भी वृंदावन के एक पासंग में नहीं आते राधा कुंड के, राधा कुंड के कभी भी बराबर नहीं कर सकते। और यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड में कृष्ण ने भी समर्पण कर दिया है राधा जी को। तब यहाँ पर कुंज बिहारी बन करके बैठे, ये मठ का नाम है
कुंज बिहारी,
प्रभुपाद जी ने इस मठ का नाम रखा कुंज बिहारी अपने हाथों। अभी इसका महत्व भी समझ में नहीं आता, किसी चीज की नींव डालना, बीज डालना एक बहुत बड़ी भारी चीज होती है। उसमें में बीज था, रूपा जी ने बीज दिया और इसके बाद में धीरे धीरे ये पल्लवित होकर के आज विश्व में महाप्रभु जी का नाम सर्वत्र ये फैल रहा है। इसलिए उस समय में बड़ा तीव्र संघर्ष था, वृंदावन के मठों में, मंदिरों में, गोसाइयों के मंदिर में गौड़ीय मठ वालों को जाने नहीं देते थे, वैष्णव ही नहीं समझते थे। अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रभुपाद इत्यादि की धारा को अभी स्वीकार नहीं करे, एक दिन मानना पड़ेगा। हम लोगों में जितने छटाई माल होते हैं, छटाई माल जानते हैं छटाई माल अपदार्थ जो होता है छोड़ देते हैं, वो यहाँ पर बाबा जी बेच ले लेते हैं ना? देख लीजिए आपके स्कूल से, हमारे गौड़ियों मठों से जितने रिजेक्टेड बाल होते हैं, समझ नहीं पाते हैं प्रभुपाद जी की धारा को। संकीर्तन के माध्यम से स्मरण होगा,
कीर्तन
प्रभावे स्मरण हो वैसे काले निर्जन भजन, और नहीं तो इस संसार के स्त्रियों को और अपने को पुरुष मान करके नायक नायिका का विचार लेकर के हम भ्रष्ट होकर के मर जाएंगे। इसलिए पहले ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य धारण करें, इसके बाद में शिक्षा ग्रहण करें, इसके बाद में सेवाधिकारी बने और देहात महिमान दूर हो जाए। तत्पश्चात लोभ यदि उत्पन्न हो तो इस भक्ति में प्रवेश कर सकता है व्यक्ति। और आज ही एक आदमी आया जिसको शौच करने का कोई ज्ञान नहीं, और आज ही उसको दे दिया लंगोटी या क्या कहते डोर कोपिन दे दिया, तो मरेंगे नहीं तो क्या होगा? इसलिए योग्यता अर्जन करे पहले, और नहीं तो अनर्थ की सृष्टि होगी। प्रभुपाद जी के विचार की ये धारा थी, हम लोग उसी लाइन से चलते हैं। अनाधिकारी के लिए नहीं, जिसको लोभ उत्पन्न हो वह लोभ उत्पन्न करने की चेष्टा की जाए। चैतन्य चैतामृत का श्रवण करे, श्रीमद् भागवत का श्रवण करे, श्रवण करते 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 देहात अभिमान इत्यादि दूर होने के बाद में तब इस चीज को ग्रहण करके इसमें प्रवेश कर सकते, तब राधा कुंड में आएगा। राधा कुंड श्रीमती राधिका जी का निज स्थान है, इसका कैसे उद्भव इत्यादि हुआ हम वहाँ पर जाकर के कुछ बतलाएंगे। अब यही समझ रखिए कि भजन मार्ग में इससे बढ़कर के या सिद्ध में कोई भी स्थान इस राधा कुंड में नहीं है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने यहाँ पर यह मठ स्थापन किया और यहाँ पर श्री कुंज बिहारी गौड़ीय मठ स्थापन किया। और उन्होंने कहा, अब तक मैं जंगल काट रहा था बगीचा सुंदर लगाने के लिए, तो मेरा समय अभी तक जंगल काटने में गया, अब जब मेरा अंतिम समय हुआ, मेरी इच्छा थी ये राग मार्ग का कुछ जगत में विचार करूं, किंतु जंगल काटते काटते हमारा समय, हमारे गुरु जी भी यही कहते थे, जंगल काटने ही हमारा समय निकल गया। तब हाँ, उस रास्ते को बंद नहीं कर दिया, भजन करते करते इस लाइन में जो आ सकता है वो परम सौभाग्यवान है जिसको लोभ उत्पन्न हो, और उनके लिए चैतन्य चेतामृत हमारे रूप गोस्वामी इत्यादि के ग्रंथ, रूप रघुनाथ के, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम ठाकुर के ग्रंथों में इसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे जितने भी आचार्य हैं सब रूपानुग हैं, और वो कैसे हैं? रागानुगी हैं, साधारण नहीं, कोई भी देख लीजिए। इसलिए हमारा प्राप्य स्थान तो वही है, किंतु हम लोगों को योग्य बन करके धीरे 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 प्रवेश करना है। ये श्री राधा कुंज बिहारी जी हमारे ऊपर में कृपा करें, हमारा गुरु वर्ग हमारे ऊपर में कृपा करें, स्वयं राधा कुंड जी कृपा करें, श्री प्रभुपाद जी हमारे ऊपर में करें, हमारे गुरु पाद पद्म अखंड गुरु तत्व हमारे ऊपर में कृपा करें, हमारे गुरु पाद पद्म भी कृपा करें, ये आप सब लोग इसमें प्रवेश करने की चेष्टा करें। और राधा दास से ही एकमात्र रूप मंजरी का दास ही हमारे लिए एकमात्र
रही छड़ो भोग रही।
इस तरह से हम लोग ये प्रार्थना करके क्रमशः राधा कुंड में चले गए। थोड़ा सा अंग्रेजी में संक्षेप में बतला दीजिए, चैतन्य महाप्रभु जब आए तो यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड नहीं था, पारसी में वे बैठे पूछा कि भाई राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है? लोगों ने श्याम कुंड राधा कुंड यहाँ नहीं है, एक काली एक गौरी, ये दो खेत हैं जिसमें धान होते हैं, थोड़ा सा पानी है। अकबर बादशाह वहाँ अपनी हजारों लाखों सेनाओं को लेकर के आया, घोड़ों को हाथियों को पानी पिलाने के लिए, अपने सैनिकों के लिए। रघुनाथ दास को स्वामी से पूछा, भाई कहीं पानी है पास में? तो जी इसी में पिला लो। तो इसमें तुम्हारा एक घोड़ा का भी पानी नहीं हुआ, तो पिला करके तो देखो। तो पिलाया तो जितना पानी का पानी रहा, और सब सारी सेना हाथी घोड़े सब पानी उसके पी लिए, खत्म नहीं हुआ। महाप्रभु जी ने काली खेत में कृष्ण कुंड और गौरी कुंड में गौरी खेत में राधा कुंड को बतला करके वहीं पर स्नान किया और लोगों को ये प्रकाशित किया कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। पीछे से इनकी इच्छा हुई रघुनाथ गोस्वामी की, ये इसका कुंड का अच्छी तरह से हम प्रकाश करें। जो ही भावन आई तो ही बद्रीनाथ से एक कोई सेठ सोने के असरफियां लेकर के यहाँ पर पहुंचा। बोले जो उन्होंने कहा है जैसे जाओ वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी है, उनको ये रुपये दे देना और वो कुंड को निर्माण करें। जब यहाँ आए तो वो रुपया देने लगे तो इन्होंने लिया नहीं। कहीं से ये तो विषय, अरे राधा कुंड तो अपने आप में पूर्ण है, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। अंत में बद्रीनाथ ने इनको भी दर्शन दिए कि हमारी सेवा कुछ ग्रहण करो। तब फिर उस रुपये को लेकर के खुदवाने लगे। राधा कुंड को चार कोना से सुंदर बनाया और कृष्ण कुंड को जब खनन करने लगे तो यहाँ पर देख रहे एक पेड़ है, ऐसे ही यहाँ पर पांच पेड़ थे, नीम का एक पेड़, एक नीम का पेड़, एक बट का और एक तमाल का, एक अदम्ब का, ऐसे ही पांच पेड़ थे। हमने इन पांचों पेड़ों को देखा है। अब वो धीरे 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 ये अंतिम था, ये भी चला गया। एक नीम का पेड़ अलग से लगा रहे हैं, दूसरे पेड़ लगा रहे हैं, किंतु पहले वाला सब चला गया। उन पांचों ने इनको कहा, पांच पांडव हम लोग हैं, वृक्ष नहीं है, वृक्ष के रूप में रह करके ब्रज भाव को लाने के लिए हम तपस्या यहाँ पर कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं राधा जी के मंत्र से, इसलिए आप हम लोगों को छेड़िए मत, हम लोगों को कटवाइए मत, हमारा भजन पूर्ण होने दीजिए, बल्कि आप उनके नित्य सिद्ध परिकर हैं, आप हम पर कृपा करें। तब रघुनाथ गोस्वामी ने वृक्षों को छोड़ दिया और जैसा टेढ़ा है वो कृष्ण का कुंड जैसे, कृष्ण टेढ़ा तेरी मैया टेढ़ी,
तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी,
तुम्हारी नजरिया टेढ़ी, तुम्हारी
टेढ़ी
गोपियां टेढ़ी, तुम्हारी मैया टेढ़ी, तुम्हारी बंसी टेढ़ी, तुम्हारी लखटू टेढ़ी, तुम्हारा शरीर टेढ़ा, सभी तुम्हारा टेढ़ा, तो वो सीधा कैसे होंगे? इसलिए जैसा कुंड था वैसे ही कुंड को उन्होंने प्रकाश यहाँ पर किया है। काशी में यहीं पर रूप गोस्वामी के साथ में रघुनाथ दास जी बैठे थे और वो चाटू पुष्पांजलि नामक एक स्तोत्र कृष्ण के लिए देख रहे थे। सनातन गोस्वामी जी ने को दिखलाया, उन्होंने देखिए मैंने एक पुष्पांजलि लिखा है। उन्होंने पढ़ा, पढ़ करके पहले श्लोक को ही देख करके बोले, अरे तुमने ये क्या क्या कर दिया। हमारी राधा जी संसार में सबसे मधुर सबसे श्रेष्ठ हैं और वो अमृत कोटि कोटि अमृत से भी बढ़ करके हैं, और उनकी बेणी की तुलना तुमने विषधरी बेणी जलंगना फना,
देवी को रचना गौरी प्रवरणी बराम्बरा मनुष्यवती बेनी गलंगना फना,
तो तुमने काली नागिन से उनकी तुलना दी, ये ठीक नहीं है। राधा जी काली नागिन नहीं हो सकती, उनके बाल ऐसे नहीं हो सकते हैं, तो आप इसको संस्कार कर दिए, संशोधन कर दीजिए। कहे अच्छा अभी तो मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा है, हम इसको पीछे से संशोधन कर देंगे। सोचते सोचते यहाँ से निकले और जब वहां पर गए तो देखा उसके उस तरफ में उस दिशा में, जब वहां पर गए देखा एक कदम्ब पर एक डाल पर झूला झूल रहा है और एक छोटी सी किशोरी झूल रही है, उसको आठ सखियां झूला रही हैं। अब जो सखी जो झूल रही है उसके केस पर सांप नागिने चढ़ी हैं और ऐसे मानो डसने वाली है। अरे लाली 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 ये क्या, देखो ठहरो ठहरो। इतने में उसने उनके तरफ में देखा, मुस्कुरा दिया, फिर लीला ही समाप्त हो गया। जब वहां पर पहुंचे देखा अरे वो कहां गया, क्या हुआ, ये कौन थी? और रूप गोस्वामी जो लिखा वो ठीक है, वो कभी भी भूल नहीं हो सकता है, तो उनकी खास कमरे की हैं, उनकी प्रिया हैं, इसलिए उन्होंने ठीक लिखा है और संशोधन करने की जरूरत है। हमारे संदेह को दूर करने के लिए ऐसा ये दृश्य हुआ। इसलिए सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी के गुरु हैं, बड़े भाई हैं, पिता तुल्य भी हैं, किंतु उन्होंने उनको गुरु के रूप में माना और रूप गोस्वामी तो उनको गुरु मानते हैं, इसलिए वहां का संबंध कुछ ही दूसरे तरह का, यहाँ का संबंध अभी गुरु शिष्य का संबंध अभी हम लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, कभी दिमाग में नहीं आता। जड़ बुद्धि है ना, वहां पर जड़ बुद्धि नहीं है। कृष्ण संबर ब्रह्मांडों के प्रभु हो करके राधा जी के चरण में पंजा पाते हैं, बार बार मस्तक टेकते हैं, ये साधारणों के लिए बुद्धि गम्य है, यही प्रेम है। उन लोगों में भी ऐसा प्रेम है, जगत का प्रेम नहीं, वैकुंठ का प्रेम नहीं, द्वारका का प्रेम नहीं, अयोध्या का प्रेम नहीं, ब्रज की वो खास वो लोग हैं, वो लौंग मंजरी हैं, वो रूप मंजरी हैं, इसलिए एक दूसरे को गुरु कहते हैं इसमें कोई भी असंभव नहीं है, ये हो सकता है, उनका भी संदेह दूर हो गया। ऐसी यहाँ पर हजारों कथाएं हैं, हमारे रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने और सब लोगों ने वर्णन किया है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये रूप मंजरी जी का ये कुंज है, उसमें हम लोग खड़े हैं, यहाँ दोनों कुंड मिले हैं और थोड़ा सा राधा कुंड बढ़ गया है इधर, और यहाँ पर जो खाली स्थान है यही रूप मंजरी का स्थान है। और रूप मंजरी की जितनी सखियां हैं इसी दर में रहती हैं, इसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी और जितने हैं सब भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि प्रभुपाद हम लोगों के भक्ति सिद्धांत सरस्वती इत्यादि सबका कुंज यहाँ पर है। सखाओं के उधर में कुंज है, उन लोगों ने सखियों को ललिता दी शाखा इत्यादि को अपना कुंज दे रखा है। इस तरह से ये अपराकृत सर्वोत्तम धाम है, भजन की पराकाष्ठा से बढ़कर के और कुछ नहीं। अंतिम हमारा गोल भी वही पर है, अभी नीचे में हम लटपटा रहे हैं, किंतु हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि रूप गोस्वामी के चरणों में आ गए, इस गुरु परंपरा की लाइन में आ गए और हम लोग वहां पर नहीं पहुंचने की कोई चेष्टा करें, हमारा जैसा दुर्भाग्य जगत में कोई भी पैदा नहीं हुआ, इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। इसे आज रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे ऊपर में कृपा करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का वहाँ पर समाधि है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहीं पर बैठ करके चैतन्य को पूरा किया, आरंभ किया था कहाँ से, मदन मोहन जी के, मदन मोहन क्या राधा दामोदर वाले में जहाँ पर रूप गोस्वामी का भजन टूटी, वहीं पर उनकी विष्णु वैष्णव की राजसभा थी, वहीं से उन्होंने आरंभ किया। जीव गोस्वामी इत्यादि जहाँ पर रहते थे यहाँ पर बीच बीच में आते थे। सब गोस्वामियों से जाने के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी खूब दीर्घायु थे, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी से कृष्णदास कविराज की भेंट हुई और उन्होंने अपने सारे स्वरूप जी का खर्चा, मुरारी जी का खर्चा और सब खर्चा उनको दिया, और मुख्य जबानी जितनी बातें थी रूप सनातन इत्यादि की बातें सब उन्होंने कही। तब ये चैतन्य चरितामृत बना है, समस्त ग्रंथों का सार है। आज हम लोगों का सौभाग्य जिस ग्रंथ को हम लोग पाते हैं और यहाँ पर हम लोग आते हैं इसी भावना के साथ में आए, जो रूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी कृपा करें, जिसकी कृपा के आधार पर हम राधा कुंड और श्याम को समझ सके और श्याम कुंड का भी आराध्य राधा कुंड को भी हम लोग समझ सकें कि क्यों ऐसा है। राधा कुंड की और यहाँ की जो उत्पत्ति की बात है मैं समय अनुसार से पीछे बतलाऊंगा, और इस सबको प्रणाम करके फिर हम लोग इधर से निकल करके चले जाएंगे। बोलो रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जय, अखड़ गोस्वामी वर्ग की जय, समवेत भक्तबिंद की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। राधा कुंड और श्याम कुंड के, राधा कुंड और श्याम कुंड के, राधा कुंड श्याम कुंड के चारों तरफ में और चारों कोनों में ललिता शाखा चित्रा चंपक लता इंदुलेखा रंग देवी सुदेवी ये सब सखियों का और आठ सखियों का और फिर रूप मंजरी रति मंजरी इत्यादियों का कोटि कोटि गोपियों का ये कुंड सब हैं। कुंड बने उनके कुंज हैं, अब कुंड के रूप में बदल गए हैं, है कुंज असल में
पिघल गए भी
स्मृति के लिए रख के बढ़ाने के वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से ये कुंड चारों तरफ में, इधर में सखाओं के कुंज थे, सुबल पहले सुदाम सुदाम वसुदाम स्तोभ कृष्ण लवंग अर्जुन मधुमंगल उज्ज्वल ये सब उनके सखा लोग हैं, प्रिय नॉर्मल सखा उनके कुंड हैं, किंतु वो लोग उनको आने में संकोच होता है या नहीं आ पाते, इसलिए वो कुंज अपना दे दिया सखियों को, सखियों ने अथवा सखावों को यहाँ से भगा दिया और कुंज को उन्होंने अधिकार कर लिया, कैप्चर कर लिया है यहाँ, सखाओं को आने नहीं देती वहाँ यहाँ से क्योंकि उन्हीं का साम्राज्य है। यहाँ पर पुरुष रूप में कोई नहीं आएगा, शंकर भी नहीं आ सकते और भी तो बात क्या है, वो भी नहीं आ सकते। यहाँ पर कौन आएंगे, चंद्रावली इत्यादि आएंगे वो भी नहीं आएंगी, यहाँ पर तो श्रीमती राधिका की अपनी खास सेवा करने वाली राधा जी का जिन पर विश्वास है ऐसे रूप मंजरी रति मंजरी लवंग और कर्पूर इत्यादि सब मंजरियाँ रहेंगी, इनके बिना अनुगत्य के यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पासी में ये श्री जी को समय ऊपर से नाम धारण किए हुए हैं, ये हैं विलास मंजरी जी, उनकी खास सखियाँ हैं, गण इनका राधा जी का है जूथ, ललिता विशाखा का ललिका का गण है और उसकी शिक्षयित्री हैं विशाखा जी और अधिनायक तत्व है रूप रद्दी मंजरी इत्यादि का, उसमें हमारा ये गुरु परंपरा चलती है, उसमें यदि कोई आ सके तो उनका जीवन धन्य है। हम लोग ऐसे स्थल पर आए हैं, लोग हो बहुत अच्छी बात, नहीं तभी घूमें कितने जन्म जन्मांतरों के बाद में हम लोग यहाँ आए। राधा कुंड को यहाँ पर प्रणाम कीजिए, बोलो राधा कुंड की जय, ललिता कुंड की जय, अनन्य समस्त कुंजों की जय। ललिता जी की विशेषता क्या है, राधा जी को शिक्षा देती हैं, कृष्ण को तो दूर रहे, राधा जी को शिक्षा देती हैं, धूर्ते कृष्ण बड़ा धूर्त है, चंपट है, लंपट है, तुम उसको फेर में मत पड़ो, धूर्ते ब्रजंद तनये तनुसुष्ट माम्यम, अंकुश जरा ठीक रखो, सीधा मत करो अंकुश, ये तो अंकुश नहीं रहेगा, अंकुश होता है ऐसे ने? हाथी के कान में देकर के खींच लेते हैं, हाथी बैठ जाता है। राधा जी का मान ही अंकुश है जो कृष्ण रूपी मत्त गजराज को बसीभूत कर लेता है, इसलिए तुमको मैं शिक्षा देती हूँ, तुम सरल सीधी मत होना, बिना टेढ़ी उंगली के घी नहीं निकलता, इसलिए तुम टेढ़ी रहना, सीधा हो जाएगी तो तुम्हारा मूल्य कुछ नहीं रह जाएगा, इसलिए तुमको शिक्षा दे रही हूँ, मान में कर्कश रहना और चौकस रहना मान में, नहीं तो वो नहीं मानेंगे, इस तरह से उनको शिक्षा देती हैं। राधा जी कहती हैं जहाँ है मैं क्या करूँ, हमारा मान ही नहीं रह पाता कृष्ण को देखने से, तो कहते खबरदार ये भी मानते, ऐसे ये सब शिक्षा देने वाली ये ललिता जी के चरण में हम कोटि कोटि बार प्रणाम करके हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी का बैठक है, चैतन्य महाप्रभु जी यहीं पर बैठे थे सबसे पहले, उस समय कुंड इत्यादि का पता नहीं था, हमने पहले बतलाया कि दो खेत थे, एक काली और एक गौरी, चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, लोगों नहीं बतला सके, फिर उन्होंने बतलाया कि ये तो काली है और वो गौरी खेत है, इसमें धान लगे हुए थे, थोड़ा थोड़ा पानी था, महाप्रभु जी ने इस खेत में स्नान किया, बोले ये कृष्ण कुंड है और उधर में राधा कुंड है, फिर संगम पर गए और लोगों को प्रकाश किया कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने पीछे से उसको खोद करके खुदवा करके और सुंदर रूप किया, ये रघुनाथ दास गोस्वामी का बनाया हुआ है, यही पर चैतन्य महाप्रभु जी का वो तमाल का वृक्ष है जिसके नीचे वो बैठे थे, आजकल तमाल भी महाप्रभु जी के जिला में अंतर्ध्यान हो गया है, आप लोग यहीं से प्रणाम करके महाप्रभु जी की कृपा प्रार्थना करके फिर हम लोग जुगल घाट में चलेंगे, बड़ो सचिनंदन गौर है, सचिनंदन के घाट राधा कुंड श्याम कुंड।
क्या हो
मनिंद्र बिंद
श्यामा सुंदर
श्याम सुंदर
सर्वेश्वर श्री कृष्ण राधा कांत मुरली मनोहर राधिका ऋषि स्वागतम करो आसनम ग्रहण करो पुष्पांजलि
सतुनीतमिहामृत निन्दिनी विन्दन मधुरीम सारम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे
श्री कृष्ण कुंड की
जय
श्री कृष्ण चंद्र की
जय
ये कृष्ण कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट हुआ और अरिष्टस नामक एक असुर था उसने बैल का रूप धारण कर लिया सांड का रूप धारण कर लिया और कृष्ण को मारना चाहा कृष्ण ने उस बैल को मारा विषभासुर को यहाँ पर मारा गोपियों ने कहा तुमने एक बैल को मार दिया तुमको गो हत्या का पाप लग गया कृष्ण कहा जी हमने असुर का वध किया है गैया का तो वध नहीं किया है ये तो गाय का रूप धारण करके आया किंतु हमने मारा ऐसा नहीं इंद्र ने भी वित्रासुर को मारा था किंतु ऋषि का लड़का ब्राह्मण था इसलिए उनको पाप लगा मन सरोवर उनको छिपना पड़ा प्रायश्चित करना पड़ा इसलिए आपको भी प्रायश्चित करना पड़ेगा अच्छा तो तुम ही लोग विधान दो जो क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा उन्होंने कहा जिसे विश्व के जितने तीर्थ हैं उनमें स्नान करके आ करके तब हमको छूना
अच्छा
कृष्ण कहा अच्छी बात है तुम लोगों का आदेश पालन करूंगा ऐसा कह करके उन्होंने आवाहन किया रामेश्वर से लेकर के बद्रीनारायण मानसरोवर से लेकर के विश्व ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं प्रयाग इत्यादि सब लोग उपहार लेकर के यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर सब जब आ गए तो उन्होंने कहा जैसे हम आपकी क्या सेवा करें उन्होंने कहा तुम पानी रूप धारण करके हमारे इसमें प्रवेश करो कृष्ण ने अपनी एड़ी से एक जोर मारा और वहाँ पर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एक कुंड तैयार हो गया और वो सब लोग यहाँ पर पानी बन करके इसके अंदर में प्रवेश किए कृष्ण ने उसमें स्नान किया स्नान करने के बाद में
सखियों ने सोचा कि हम भी इस समय अपना एक कुंड निर्माण करें
ठीक है इसलिए राधा जी का मन दूर नहीं हुआ नहीं दूर रहो उनको सामने नहीं आने दिया हम एक कुंड में बनाएंगे यहाँ उसमें तुम स्नान करके तब पवित्र होगा ऐसे नहीं तो राधा जी ने अपने अंगूठे से
नक्शे एक ऐसा लगाया जिसे ये चारों कोण का बस सुंदर एक सरोवर हो, किंतु पानी नहीं।
राधा जी ने अपने
पानी जब नहीं आया
तो
कृष्ण ने कहा जी हमारे कुंड से पानी ले लो। उन्हें तुम्हारे कुंड से हम उधार लेने क्यों जाएं? मनसी गंगा में पानी वहाँ से हम ले आएंगे। लाखों घाट लेकर के पहुँची
मन से भगवान ने,
इतने में कृष्ण ने उनको इशारा किया इनके चरणों में गिर करके सब त्याग कर हम जाने नहीं देंगे, हम हमको सेवा का अवकाश दिया जाए। तो रास्ते में वो गिर करके सब त्याग उन्होंने किया तो राधिका जी को दया आ गई। उन्होंने कहा जी अच्छी बात है, एक छेद इधर से हुआ और उसमें चला गया। नीचे हम जहाँ पर बैठे थे वहीं पर छेद है मिलने का, तो वहीं पर वहाँ का पानी उसमें लेकर के भर गया और कृष्ण ने फिर वहाँ पर स्नान किया, वहीं पर राधा जी की आराधना और पूजा की। तब से उन्होंने राधा कुंड की अधिक महिमा दी। वो तो प्रभु का ऐसा ही स्वभाव है कि अपने भक्तों का ही, अपनी शक्ति का, राधा जी का ही अधिक मान देते हैं। तब से ये जुगल घाट कहलाया। कृष्ण इधर से हैं, दाहिने और बाएं हैं श्रीमती राधिका जी, दोनों नित्य काल में अवस्थान करते हैं। कृष्ण के दर्शन से जो लाभ होता है, राधा जी के दर्शन से जो लाभ होता है, इन कुंडों में स्नान करने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से, स्तव पूर्ति करने से, पूजा करने से, वही फल लाभ होता है। बल्कि राधा जी से भी राधा कुंड दयालु है, कृष्ण से भी कृष्ण कुंड दयालु है, क्योंकि हमारे जैसे गिरे गए पतितों के लिए भी हम लोगों के लिए वर्तमान है। हम इनका दर्शन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। कृष्ण को दर्शन करना बहुत दूर की बात है, इसलिए राधा कुंड जी यहाँ पर राधा जी के स्वरूप में, कृष्ण जी कृष्ण कुंड के स्वरूप में आज हमसे हम प्रार्थना करते हैं। हम उनका स्पर्श नहीं कर सकते, तभी उन्होंने ऐसा अनुग्रह किया है जो हम एक तरह से तो स्पर्श कर ही सकते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हम अपने चिन्मय आत्मा के द्वारा भी उनका स्पर्श कर सकें और कृष्ण लीलाओं में हम प्रवेश कर सकें। यही प्रार्थना करके किशोरी जी के और किशोर के हम